الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين إلى الآخر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے تھے، آیات نمبر 7 سے لے کر کے 14 کی. ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مکمل ہو گیا تھا اور معارف و مسائل شروع ہو چکے تھے، اور اس میں ہم پیج نمبر 562 کے اوپر ہیں، جس میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے. کیا موضوع؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور آگ کے اندر سے ایک ندا سننے کی تحقیق. ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور اس آواز میں باقاعدہ کہا گیا کہ انی انا اللہ، کہ بے شک میں، اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ آواز آ رہی ہے ایک درخت کے اندر سے. ٹھیک ہے، تو اس پہ حضرت نے لکھا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، تو اسی موقع اور اسی واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ان کی تو ایک آسان سی توجیہ، یعنی ایک آسان سی جو وجہ ہے، وہ بیان کر دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ندا بار بار ہوئی ہو، کبھی ایک لفظ سے، یعنی کبھی ایک جملے سے، اور کبھی ایک دوسرے جملے سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سمجھنا نا کہ مختلف الفاظ کیوں ہیں ایک ہی کانورسیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ کانورسیشن میں بار بار کی ریپیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ آگے ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہم مسئلہ شروع کرنے والے تھے یہاں پہ، وہ اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی بہت اہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ. ٹھیک ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ایک سوچ کو. ٹھیک ہے، دل کی ایک سوچ ہے، گمان ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو اس کے بارے میں عقیدہ کہا جاتا ہے. اور یہ عقائد جو ہیں، جب دینی نوعیت کے عقائد ہوتے ہیں، دین سے متعلق، دین کے اجزاء یا دین کے جو ہے وہ شخصیات سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، تو یہی عقائد جو ہیں وہ مل کر کے ایمان بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان جو ہے وہ ایک اس کی اجمالی یعنی ہائی لیول ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی فرمایا تو اس کے اوپر زبان سے اقرار کرنا اس کا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایک اجمالی یعنی ایک ہائی لیول، ایک سپرفیشل ڈیفینیشن ہے ایمان کی. لیکن ایمان کی تفصیلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اجزاء ہیں ایمان کے اندر جن کو کہ عقائد کہا جاتا ہے. جیسے آمن تو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ اور ملائکہ پر ایمان لایا، و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ. رائٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عقائد کہلاتے ہیں، اور یہ سات عقائد بھی ہائی لیول ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدے، کیا کیا عقائد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خاتم النبیین ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے نا، اور ملائکہ کے بارے میں، تو یہ عقائد سب مل جل کر کے ایمان بنتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ عقائد میں سے اگر کوئی ایک بھی بنیادی عقیدہ انسان کا خراب ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ پورا کا پورا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اب مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر اچھا خاصا یہاں پر کلام کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، تو ان کا ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی ہماری جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے نا، جس اگر ہم نے अमल के अंदर कोई गलती कर ली है, अगर हमने अकीदे के अंदर कोई गलती कर ली है, तो उसको जो है वो ठीक कर दिया जाए, हमें बता दिया जाए कि ये गलती आपसे हो रही है, आप इसकी ऐसे इसलाह कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जो है वो गुमराही के रास्ते से बच जाएं, यानी गुमराही से बच जाएं और जहन्नुम के रास्ते के ऊपर चलने से बच जाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता उनका कि गलती की इसलाह कर दी जाए या इन अदर वर्ड्स बीमारी का इलाज कर दिया जाए, क्योंकि गलती जो होती है वो दरअसल बीमारी ही की एक शक्ल होती है, ठीक है। वो बीमारी भी तो एक गलती ही है ना बेसिकली, ठीक है, कि आप जो है वो जैसे आपकी सेहत होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको फुल परफॉर्मेंस के लिए जो है वो आपका बदन, आपकी जो है वो यानी स्पिरिट्स जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है, इसका मतलब ये देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, राइट, रॉन्ग, गलत, ठीक है। तो बीमारी की इसलाह, बीमारी का इलाज इज इक्वल टू गलती की इसलाह, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गलती की इसलाह खाली नहीं है बल्कि ये भी है कि मुमकिना गलती से बचाया जाए, फ्यूचर में कोई गलती में हम ना पड़ जाएं, उससे एहतियात करने के लिए भी हमें बताया जाए, हमें इल्म दिया जाए, ठीक है। तो हफ्जत यहाँ पर ईमान वालों को जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, इनकी तफसीर पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि सारी सही और अकीदा ही है, लेकिन कहीं फ्यूचर में शैतान या शैतान सिफत लोग जो होते हैं तो वो किसी गलत अकीदे में मुब्तला ना कर दें, तो उससे एहतियात के लिए ये सारी की सारी तफसीर यहाँ पर हजरत ने लिखी है। तो वही फरमा रहे थे कि ये गैबी आवाज थी जो बिला कैफ व बिला सिमत सुनी जा रही थी, लेकिन मबदा इसका वो आग या दरख्त था जिससे आग की शक्ल उनको दिखाई गई, ठीक है, यानी वो दरख्त था वहां से ये प्रोड्यूस हो रही थी जहां से कि इनको आग की शक्ल दिखाई दिखाई गई थी। ऐसी मवाक़े आम तौर पर लोगों के लिए मुगालते और बुत परस्ती का सबब बन जाते हैं, ठीक है, कि भाई दरख्त से जो है वो अल्लाह ताला की आवाज आ रही है, तो इस तरह से दरख्त भी जो है ना ये गोया के अल्लाह है, नाउज बिल्ला, ठीक है, तो अब इसकी भी परस्ती शुरू कर दी, सही है। तो इस तरह से जो है ना वो शैतान लोगों को बुत परस्ती और मुगालते वगैरह के अंदर मुबतला कर देता है। इसलिए हर उनवान में मजमून तौहीद की तरफ हिदायत और तंबीह साथ साथ की गई है, यानी कुरान मजीद में इस वाक्य को जहां जहां भी अल्लाह ताला ने बयान किया है ना, तो वहां वहां साथ साथ तौहीद की तंबीह भी कर दी गई है, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है ना वो वाहिद जात है, और वो ऐसा नहीं है कि ये यानी दरख्त की शक्ल में मौजूद हो गई और या पत्थर की शक्ल में मौजूद हो गया या लकड़ी के किसी और फॉर्म के अंदर या किसी इंसान की शक्ल में, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तो इशारतन तौहीद का जिक्र हर जगह कर दिया गया, लेकिन इसकी तफसील अल्लाह ताला ने उलमाए कराम के ऊपर खोली है जो वो फिर हमें समझाते हैं। हम तो पढ़ते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि अच्छा इसमें तौहीद की भी तरफ कोई इशारा हो रहा है, अच्छा पता नहीं भाई, हमें तो समझ में नहीं आया ये बात। तो फरमाते हैं कि जेर बहस आयत में लफ्ज सुबहान अल्लाह इसी तंबीह के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है, कि पाक है अल्लाह ताला की जात हर किस्म की कमियों कोताहियों से और लिमिटेशन से पाक है। सुबहान का मतलब क्या है? पाक, ठीक है। तो सुबहान अल्लाह का लफ्ज जो है ना ये तौहीद की तरफ दलालत कर रहा है, ठीक है। हम तो तस्बीह हैं, तस्बीह फेरते हैं भी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़कर के 33 मरतबा पढ़ लिया या 100 दफा पढ़ लिया, 1000 दफा पढ़ लिया, राइट, हम तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, हमें कभी ख्याल भी नहीं आया होगा अनलेस के हमने किसी से सीखा, किसी से पढ़ा, वरना तो हमें ख्याल भी नहीं आया होगा कि अच्छा सुबहान अल्लाह के अंदर तौहीद भी है। तौहीद क्या से आ गया भैया? तो तस्बीह होती है, तस्बीह फेरने वाली तस्बीह जिसको कहते हैं हम लोग, राइट, नहीं, इसके अंदर तौहीद है, ठीक है, अल्लाह ताला शिर्क से पाक है, नुक्स से पाक है, लिमिटेशन से पाक है, हदबंदी से पाक है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास में, ठीक है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। कैन वी आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस इन दिस क्लास, लाइक जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड टू दिस सूरा? इररिलेवेंट का लफ्ज तो मुनासिब नहीं था, लेकिन हाँ, जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड टू दिस सूरा भी आप पूछ सकते हैं। जिस वक्त ये आज लेक्चर दे रहा है तो आप अपना सवाल लिख करके यहाँ पे करते हैं एंटर, और फिर मौके की मुनासिबत से या जैसे भी होगा उसके हिसाब से, अगर इस आज उसका जवाब आता होगा तो उसका जवाब जो है वो इस क्लास में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इस क्लास के अंदर इस तरह से भी सवाल किए जा सकते हैं। तो इल्म हासिल करने की नीयत से जो सवाल होता है ना, वो इल्म की क्लास के अंदर इनरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। हाँ ये है कि नॉट रिलेटेड टू द सूरा, ठीक है, बट वी डू अलाउ सच सच क्वेश्चंस। अच्छा आगे फरमाते हैं कि सूरह ताहा में ला इलाहा इल्ला अना, ये भी तौहीद है कि नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय मेरे, ठीक है। और सूरह कसस में अल्लाहु रब्बल आलमीन, ठीक है, कि मैं अल्लाह हूं तमाम आलमीन का एक रब, ठीक है, यानी रब का लफ्ज जो है वो वाहिद का सीगा है, सब का सब अकेला मैं ही पालता हूं, रब्बल आलमीन। इसी मजमून की ताकीद के लिए लाया गया है, ठीक है, यानी दूसरे मुकामात पर जो ये वाकया जिक्र किया गया है तो किसी ना किसी शक्ल में अल्लाह ताला ने तौहीद का भी वहां पर अल्फाज जो है ना वो रख छोड़े हैं। इस तफसील का हासिल ये है कि ये आग की शक्ल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखलाई गई कि वो उस वक्त आग और रोशनी के हाजतमंद थे, वरना इस कलाम रब्बानी और जात रब्बानी का आग से या शजर तूर से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। यानी कोई अल्लाह की जात और अल्लाह के कलाम का जो है ना, ये नहीं कि जी आग होगी तो अल्लाह की जात होगी, कोई आपस में एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है और कोई खास ताल्लुक है दरख्त का अल्लाह ताला की जात के साथ, नहीं, बल्कि दरख्त और आग जो है ना वो उस मौके के मौके महल की मुनासबत से अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरीके को पसंद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनकी जरूरत यही थी। अल्लाह ताला को मालूम है कि मेरे बंदे की इस वक्त कौन सी जरूरत है, किस हाल से गुजर रहा है, क्या चीज उसके जहन के अंदर चल रही है, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है, ठीक है। तो बस इतना ही ताल्लुक है इसका इस पूरे वाक्य के साथ, आग का और शजर यानी तूर के ऊपर जो दरख्त था उसका। आग अल्लाह ताला की आम मखलूकात की तरह एक मखलूक थी, इसीलिए जेर बहस आयात में जो ये इरशाद है अम्बूरे का मन फिन नारी व मन हौलहा, ठीक है, कि यानी मुबारक है वो जो आग के अंदर है और वो जो उसके आसपास है, ठीक है, मुबारक है, बरकत है उसके साथ जो आग के अंदर है और जो उसके आसपास है। उसकी तफसीर में आयमे तफसीर के मुख्तलिफ अकवाल है, जिसकी तफसीर तफसीर रूहुल मानी में है, क्योंकि एक आम आदमी हमारा जैसा वो इसको पढ़ करके उसका जहन इस तरफ जा सकता है कि वो जो आग के अंदर है, कौन आग के अंदर है, क्या अल्लाह आग के अंदर है, उसके साथ बरकतें हैं, जैसे तबारक अस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, ठीक है, कि बरकत है अल्लाह ताला के नाम के साथ, ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला के नाम के साथ जैसे बरकत है, कुरान मजीद खुद फरमा रहा है, तो इसी तरह अल्लाह की जात के साथ बरकत है, और बरकत वाली जात जो है वो आग के अंदर छुपी हुई है या आग के अंदर मौजूद थी, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी तफसीर जो आइम्मा ने करी है, बड़े बड़े इमाम उलमाए कराम ने करी है, तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी हमें इसको समझने के लिए। एक कौल हजरत इब्न अब्बास और मुजाहिद और अकरमा रहमतुल्लाह अलैहिम या रिज़वानुल्लाह अजमईन से मनकूल है कि मन फिन्नार यानी जो है आग के अंदर से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, ठीक है, क्योंकि आग कोई हकीकी आग तो थी नहीं। जिस बुकाए मुबारका में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे वो दूर से पूरा आग मालूम होता था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर हुए, ठीक है, यानी ये बकायदा एक मुबारक इलाका था, मुबारक जगह थी ये बुकाए मुबारका, ठीक है, तो दूर से जो है ना ये पूरा का पूरा जगह ही आग लग रही थी। जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हैं ना तो फिर जो है वो तफसीलात खुलती चली जाती हैं, तो फिर आप उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो चीज अभी भी आपसे दूर होती है, लेकिन दूर से अगर कोई देखे तो ऐसा लगता है कि वो आप यानी आप खुद भी उसके अंदर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक एक बड़ा रोशन कमरा होता है, तो वो रोशन कमरा आप दूर से देखते हैं ना तो वो पूरा का पूरा कमरा जो है वो बल्ब नजर आता है, ठीक है, लेकिन जब आप उस कमरे के अंदर चले जाते हैं तो फिर जाके पता चलता है कि जी ये जो रोशनी है ना, ये रोशनी तो सिर्फ बल्ब से निकल रही है, पूरे कमरे में कोई थोड़ी रोशनी निकल रही है, ठीक है, वो तो बल्ब से खाली निकल रही है। तो अब वहां पर पहुंचने के बाद जो है ना आपको जो है वो बल्ब अलग नजर आ रहा है, लेकिन अगर दूर से कोई उस कमरे को देख रहा है, एक खिड़की या कोई इस किस्म का ग्लास वॉल है और वहां से कोई कमरे को देख रहा है, तो दूर से उसको बल्ब नजर नहीं आ रहा, दूर से तो उसको पूरा कमरा जो है वह बतौर बल्ब नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी जैसे कि आप कमरे के अंदर मौजूद हो गए, हालांकि आप उस रोशनी के अंदर नहीं है, लेकिन कमरे के तो अंदर है ना, जो कि दूर से। उसी तरीके से यहां पर भी कि मन फिर नार से मुराद हजरत मूसा अलैहि सलाम हो, क्योंकि आग कोई हकीकी आग तो थी नहीं। जिस बुकाए मुबारका में हजरत मूसा अलैहि सलाम पहुंच गए थे, वो दूर से पूरा आग मालूम होता था, ठीक है। यानी ये बाकायदा जलने वाली आग नहीं थी, जो कि एक फ्यूल जलता है और उससे जो है वो दुनियावी आग क्रिएट होती है। जब भी मूसा अलैहि सलाम जब इसकी तरफ हाथ बढ़ाते थे तो ये पीछे चली जाती थी, है ना। दुनिया की आग को थोड़ी इस तरीके से मूव करती है। और मन हौलहा से मुराद फरिश्ते हैं जो आसपास वहां पर मौजूद थे, ठीक है। और बाज हजरात ने इसके बरक्स ये फरमाया कि यानी बाज हजरात ने इसकी ऑपोजिट तफसीर फरमाई कि मन फिन नार से फरिश्ते और मन हौलहा से हजरत मूसा अलैहि सलाम मुराद हैं, ठीक है। क्योंकि इन हजरात की जो तफसीर थी, उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया कि जी जो मूसा अलैहि सलाम को चीज नजर आ रही थी ना, वो तो अलग थी और मूसा अलैहि सलाम उसके बाहर थे, तो ये भी तफसीर हो सकती है। यानी ये एहतमाली दर्जे में दोनों तफसीरें मुमकिन हैं। जब नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लिसिटली कोई तफसीर नहीं बता दी ना, तो फिर उलमाए कराम का काम ये होता है कि वो अवामुन नास को गुमराही से बचाने के लिए जो है वो जो ऐसी तफसीर हो जो कि मकासद शरिया के खिलाफ ना जाती हो, उन तफसीरों के जरिए से मामले को जो है ना वो बंद कर दें, ठीक है। मामले को जो है वो लिमिट कर दें गुमराही से बचाने के लिए अवाम उन्नास को, क्योंकि अवाम उन्नास का कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना। अल अवामु कल अनआमी, अवाम कल अनआमी, ठीक है। ये अवाम उन्नास जो होते हैं ना, ये मवेशी की तरह होते हैं, ठीक है ना। मवेशी के पास इल्म नहीं होता ना, उसी तरह अवाम के पास इल्म नहीं होता। तो मवेशी को जिधर हकाओ वो हक जाता है, उसी तरीके से अवाम का भी यही मामला होता है कि जहां से भी उनको हकाने के लिए कोई आ गया ना, वो उधर हकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उलमाए कराम उनको खैर की तरफ हाँकते हैं। उलमा का क्या काम है? खैर की तरफ हाँकना, जन्नत की तरफ हाँकना, ठीक है। और जो उलमाए सू होते हैं या जो शैतान शयातीन होते हैं मिनल इंस वल जिन, उनका काम होता है अवामुन नास को शर की तरफ हाँकना, ठीक है। और आवाम का काम होता है हकना, ठीक है। अब अगर इल्म हासिल कर लिया तो हकने से बच जाओगे, और अगर इल्म नहीं हासिल किया तो फिर आप भी हकने वालों के अंदर ही शामिल है, ठीक है। इसी वजह से इल्म की जो है वो इतनी ज्यादा अहमियत है, ताकि हम मवेशी कैटेगरी से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो फरमाया कि जी ये इधर दिस और दैट दोनों ऐसी तफसीरें हैं जिनका के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता अकायद से और शरीयत से, ठीक है। दोनों तफसीरें पॉसिबल है। किसी को कोई सवाल हो इस मुताबिक तो पूछिए। आपने अपना वो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा भी नहीं अभी तक, चले जब भी आपको पूछना हो। तफसीर बयानुल कुरान के खुलासे तफसीर मजकूर में इसी को इख्तियार किया गया है, ठीक है। क्योंकि तफसीर बयानुल कुरान जो कि पीछे हमने खुलासे तफसीर में पढ़ी थी, तो उसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इस दूसरी वाली तफसीर को इख्तियार किया जो कि हम पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। आयात मस्कूरा का सही मफहूम समझने के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। क्योंकि मारुफुल कुरान जो है ना, वो मेनली जो है वो अवामुन नास के लिए लिखी गई तफसीर है, तो अवामुन नास को इतनी ही डिटेल जो है ना वो सफिशिएंट है। क्योंकि अवामुन नास का काम जो होता है वो अपने आप को गुमराही से बचाना, तो उनके लिए जितनी नॉलेज चाहिए है वो चीज काफी है, यहाँ पर काफी हो गई। अच्छा, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले इन्होंने कुछ सवाल लिख दिया है। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही आपने लिख दिया। नमाज में अपनी पूरी तवज्जो कैसे रखते हैं? नमाज के दौरान सारे ख्याल पैदा हो जाते हैं दुनियावी, जैसे बस नमाज खत्म हो गई तो कहीं जाना है, कोई भी काम हो, कुछ खाना बनाना हो वगैरह वगैरह, बस जुबान से नमाज अदा हो रही होती है, दिमाग दिल ना हो अगर तो इस कैफियत को क्या बोलते हैं? और क्या ये गुनाह है ऐसी नमाज पढ़ना? रिपीट करनी चाहिए? दिल बेचैन भी हो जाता है अगर नमाज सही तरह ना पढ़ी हो, इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें। अगर आप नमाज में ख्यालात पैदा हो जाते हैं दुनियावी, तो उससे फिर ऐसी नमाज पढ़ना क्या गुनाह होता है और इस कैफियत को कैसे दूर किया जाए? तो इसका जवाब है तो अहम, और यकीनन बहुत सारे लोगों को इस किस्म के सवालात होंगे, क्योंकि ये एक आम यानी मुशाहिदा और तजुर्बा होता है लोगों का कि नमाज के अंदर बिल्कुल भी कैफियत या तवज्जो नहीं बन रही होती। तो इसका देखें आसान सा सादा सा जवाब ये है कि नमाज के अंदर जो है ना वो गुनाह का ख्याल आना, ठीक है, कि कोई बैठ करके वहां पर जो है ना वो ये नमाज पढ़ रहा है लेकिन साथ साथ ये प्लान बना रहा है कि मैं अब जो है ना वो जा करके टीवी पे फलाना वाला प्रोग्राम देखूंगा, ठीक है, नमाज के अंदर टीवी प्रोग्राम के बारे में सोच रहा है, या नमाज के अंदर मैं अब जा करके जो है ना वो फलाने शख्स को ऐसे उल्लू बनाऊंगा, यानी झूठ झूठ बोलूंगा उससे, उसको धोखा दूंगा उससे, मैं ऐसे उसको उससे तंज करूंगा, उसको छेड़ूंगा, ठीक है ना, या उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, ये सारे हैं गुनाह के ख्यालात, ठीक है। तो ये जो गुनाह वाली प्लानिंग है ना नमाज के अंदर, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है नमाज के अंदर। इन ख्यालात को जो है वो आपने कर्ब करना है, खत्म करना है नमाज के अंदर, गुनाह वाले ख्यालात, ठीक है ना, चाहे वो नजरों का गुनाह हो, जुबान का गुनाह हो, कानों का गुनाह हो कि मैं अब जाके फलानी म्यूजिक सुनूंगा, फलाना गाना सुनूंगा, ठीक है, ये सारे गुनाह जो है ना इनके ख्यालात को तो खत्म करना है, ठीक है। अगर ये नमाज के अंदर आप एक्टिवली ऐसे ख्यालात सोच रहे हैं तो ये तो गुनाह का काम है, अगरचे के इन ख्यालात के होने के बावजूद अगर आप जाहिरी तौर पर सारे आमाल नमाज के सही सही कर रहे हैं, ठीक है ना, जाहिरी तौर पर आमाल सही सही अदा कर रहे हैं और आपने तहारत भी जाहिर है करी हुई है, वुजू वगैरह सही तरह से बनाया हुआ है, तो नमाज हो जाएगी, अदा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इन गुनाह के ख्यालात की वजह से जो है ना ये नमाज जो है ना उसकी हैसियत ऐसी हो जाएगी कि कबूलियत इसके अंदर नहीं होगी बल्कि फटे कपड़े की तरह मुंह पर मार दिए जाने के काबिल वाली नमाज, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ठीक है। तो अब इन गुनाह के ख्यालात को रोकना है, खत्म करना है, वो कैसे खत्म करेंगे, वो ऐसे खत्म करेंगे कि नमाज के बाहर जो हमारा टाइम होता है ना, नमाज के बाहर यानी जिस टाइम में आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं उस वक्त में जो है ना वो आप इन गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, ठीक है ना, यानी जुबान के गुनाह नमाज के बाहर नहीं करें, कानों के गुनाह नमाज के बाहर नहीं करें, आंखों के गुनाह नमाज के बाहर नहीं करें। जब आप नमाज के बाहर इन गुनाहों को छोड़ेंगे ना तो फिर नमाज के अंदर भी इन गुनाहों के ख्याल आने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो फर्ज है गुनाहों से बचना, ठीक है, बाहर करेंगे तब अंदर नमाज के इससे बच सकेंगे, वरना नहीं बच सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर तो आप करते रहें जुबान के गुनाह, आंखों के गुनाह, कान के गुनाह, हाथ पैर के गुनाह, और नमाज जो है ना वो अल्लाह अकबर कह करके एक आप स्विच ऑफ कर दें इन ख्यालात का, है ना, बटन ऑफ कर दें और अब जो है ना वो नमाज के ख्यालात शुरू हो जाए, ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बाहर इन गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, तब अंदर जो है ना नमाज के इन गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों के ख्यालात से बचेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह गुनाहों के ख्यालात तो नहीं आ रहे नमाज के अंदर, लेकिन इधर उधर के जैसे खाना पकाने के आपने ख्याल लिखे, ठीक है ना, आपने जो है वो कोई और दुनियावी काम जैसे कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद नबी की इमामत कराते हुए ख्याल किया आ रहा था कि मैदान जंग में जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर मुसलमान फौजें जो है वो जंग लड़ रही हैं, तो उनकी सफें दुरुस्त कैसे करनी है, उनको सफें दुरुस्त करनी चाहिए अपनी, ये कहाँ ख्याल आ रहा है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, नमाज के अंदर ख्याल आ रहा है, ये गंदा ख्याल है, ये गुनाह का ख्याल है, नहीं ये गुनाह का ख्याल नहीं है, ये अच्छा ख्याल है लेकिन इसका ताल्लुक नमाज से तो नहीं है ना, ठीक है ना, ये नमाज का तो ख्याल नहीं है ना, ये तो दुनिया के किसी मामले का ख्याल है, ठीक है, औरत को खाने पकाने का ख्याल आएगा, ठीक है। तो ये जो ख्यालात आते हैं ना इन ख्यालात की वजह से नमाज जो होती है ना वो एक तो गुनाह तो नहीं बनती नमाज, ठीक है ना, फटे कपड़े की तरह मार दिए जाने के काबिल नहीं बनती ऐसी नमाज जिसके अंदर ऐसे ख्याल आ रहा, यानी जायज वाले ख्याल आ रहे हो, ठीक है ना, गुनाह वाले ख्याल आते हैं, जायज वाले ख्याल आ रहे हो, लेकिन इन ख्यालात का आना भी इतना डिजायर्ड नहीं है, अगरचे कि इनको आप कंप्लीटली शट ऑफ नहीं कर सकते, है ना, उम्र रजी अल्लाह जब नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, तो हम कंप्लीटली शट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि नमाज तो हमने पढ़नी है, चाहे ख्याल आए चाहे ना आए हमें तो नमाज पढ़नी है, ठीक है ना, ये फर्ज है या सुन्नत मौकद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो पढ़नी है, तो अब हम क्या करें, हमने ये करना है और हमने यही करना है कि नमाज के अंदर हम नमाज के अफआल जो हम कर रहे हैं ना, अफआले नमाज, हम उन अफआल के ऊपर अपनी तवज्जो को मरकूज करने की कोशिश करें कि जी कयाम में खड़ा हुआ हूं या खड़ी हुई हूं, तो क्या मैं सुन्नत तरीके से खड़ी हुई हूं या मैं अपने उल्टे सीधे तरीके से खड़ी हुई हूँ। हाथ जो मैंने बांधे हुए हैं, क्या सुन्नत तरीके से मैंने उंगलियां हाथ के ऊपर लपेटी हुई हैं, तीन उंगलियां आगे की तरफ हैं, या मैं ऐसी कोई उल्टे सीधे तरीके से हाथ को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेरी निगाहें किस किस तरफ हैं, सजदे की तरफ निगाहें हैं या इधर उधर घूम रही हैं, राइट। रुकू, रुकू में मैं अपने घुटनों को जो है वो ऐसे पकड़ा हुआ हूं जैसे कि रुकू में पकड़ना सुन्नत है, और मेरी आंखें जो हैं वो उस तरफ हैं जहां पे के रखना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुकू के हालत में। सजदा जो मैं कर रहा हूं, सजदा जो है वो तरतील के साथ तादील के साथ मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। सजदे के अंदर मेरे हाथ सुन्नत के मुताबिक जमीन पर हैं कि या उल्टे सीधे जगहों पे हाथ रखे हुए मैंने, ठीक है। मेरी निगाहें जो है वो मेरी नाक की तरफ हैं कि या सजदे के अंदर भी इधर उधर निगाहें फिर रही हैं, ठीक है। और फिर जो कादा होता है, बैठने वाली जो हालत होती है, उसके अंदर हाथ कैसे हैं, क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, और कैसे जो है वो तशहुद की उंगली उठा रहा हूं। ये जो अफाले नमाज होते हैं ना, इनके ऊपर इंसान कॉन्सेंट्रेट करके जो है वो अपनी नमाज को मकबूल नमाज बना सकता है, मकबूल नमाज, ठीक है। और इधर उधर के अगर कोई दुनियावी मामला के ख्याल आ जाए, उनकी बिल्कुल परवाह ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। ऐसी कोई नमाज जो है ना कि जिसके अंदर आपको अर्श मौला की सैरें हो रही हो, ऐसी नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना आप कर सकते हैं, यानी आप कर ही नहीं सकते, तो खामखा इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, राइट। जो चीज पॉसिबल नहीं है आपके लिए, खामखा की इसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, एक तो अफाले नमाज, जो कि एक गैर अरब इंसान, अरबी ना जानने वाला भी ये काम कर सकते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, अरबी जुबान अगर सीख लें, समझ लें, तो फिर आपकी तवज्जो जो है, जो आप पढ़ रहे हैं या जो इमाम की तिलावत सुन रहे हैं, उसकी तरफ भी आपकी नमाज, आपकी आपकी तवज्जो बन जाएगी, ठीक है ना। वो अरबी सीखने के बाद बनेगी, ठीक है, तो उससे तो फिर माशाल्लाह और ज्यादा एडवांटेज बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हमें करना है, और यही मकसूद है, यही मकसूद है। बीच में आप जो कुछ करते हैं ना, वो अजी खामखा की शैतान की और वसवसों वाली टेंशन है, उसको कोई फायदा नहीं। तो गुनाहों से बचना ये तो फर्ज है, और फिर इससे फिर नमाज के अंदर भी फायदा होता है कि गुनाह के ख्याल नहीं आते, लेकिन जो जायज ख्यालात होते हैं उनसे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अफआले नमाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो आप पढ़ रहे हैं अरबी जुबान अगर सीख ली है तो वो पढ़ने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स इट, ठीक है जी। इंशाल्लाह और कोई सवाल अगर हो तो पूछिएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि हाँ, कि हजरत इब्ने अब्बास और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत और उसकी तहकीक, ठीक है। यहाँ इब्ने जरीर बहुत बड़े आलम दीन, बहुत बड़ी उन्होंने तफसीर 30 जिल्दों की तफसीर और 30 जिल्दों की जो है वो तारीख की किताब इन्होंने लिखी, हजरत इब्ने जरीर। तो उन्होंने और इब्ने अबी हातिम और इब्ने मर्दविया वगैरह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन, हजरत हसन बसरी और सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन से मन फिन नार की तफसीर में ये रिवायत भी नकल की है, यानी ये रिवायत से मुराद ये हदीस मुबारक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवी है, वो भी नकल की है कि मन फिन नार से खुद जाते हक सुबहानहू व तआला मुराद है, यानी इन अकाबरीन तक जो है वो ये हदीस इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से के वास्ते से पहुंची कि खुद जात जाते हक सुबहान व तआला मुराद है। ये तो जाहिर है कि आग एक मखलूक है, लेकिन अब इस हदीस की तफसीर क्या है कि खुद जाते बारी तआला मुराद है, ठीक है। मन फिन्नार, मन से मुराद यानी वो जो कौन, अल्लाह, ठीक है, जो आग के अंदर है। तो अब क्या मतलब है इस बात का कि अल्लाह आग के अंदर है, तो फरमाते हैं कि ये बात तो जाहिर है, यानी ऑब्वियस है, अपेरेंट है, नो डाउट अबाउट इट, कि आग एक मखलूक है और किसी मखलूक में खालिक का हुलूल नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी खालिक जो है ना वो डिजोल्व नहीं हो सकता, जैसे हुलूल का मतलब जैसे शकर को जो है ना वो आपने पानी के अंदर हुलूल कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब शकर और पानी जो है ना वो एक हो गए, ठीक है, शरबत जो है वो पानी के अंदर हुलूल हो गया, डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से किसी मखलूक के अंदर हुलूल नहीं हो सकता, वरना तो हिंदू और क्या कहते हैं भाई, हिंदुओं का यही तो है 3 करोड़ से ज्यादा जो इनके खुदा हैं, तो खुदा हर चीज के अंदर हुलूल हुआ है इनके नजदीक, नाउज बिल्ला। ठीक है, तो इन्होंने हर चीज को ही अपना माबूद बना लिया। तो मखलूक में तो खालिक का हुलूल नहीं हो सकता, इसलिए इस रिवायत का ये मफहूम तो हो ही नहीं सकता कि जात हक सुबहाना हुआ ताला ने आग के अंदर हुलूल फरमाया था। ठीक है, यानी सिर्फ कुरान की तफसीर की जरूरत नहीं पड़ती, हदीस मुबारका की भी तफसीर की जरूरत पड़ती है, खोलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वरना एक हदीस से भी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, और यही काम तो है उलमाए कराम, और उलमाए कराम जो है वो और करने के क्या, वो खाली है नमाजें पढ़ाने के लिए खाली कोई बंदा आलिम बनता है? नहीं, ये खाली मकसद नहीं है आलिम का कि नमाज पढ़ाना शुरू हो जाए, जनाजे पढ़ाना शुरू हो जाए। ठीक है ना, अवाम नास के अकायद को जो है वो शैतान की दस्तरस से महफूज रखना, जब भी फिर अहादीस मुबारक की तफसीर बहुत तफसील के साथ पढ़ाई जाती है उलमाए कराम को। तो जैसा कि बहुत से बुत परस्त मुशरिकीन बुतों के वजूद में जात हक के हुलूल के कायल हैं, और ये तौहीद के कतअन खिलाफ है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला इन इन चीजों के अंदर जो है वो हुलूल फरमा गया, इसी वजह से तो हम उनको सजदा करते हैं। ठीक है, तो ये तो तौहीद के कतअन खिलाफ है, बल्कि मुरादे मुराद जुहूर है। अच्छा, ये जो मुशरिकीन ये जो हुलूल का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ना, तो हुलूल का कॉन्सेप्ट भी इसका मतलब उनका ये नहीं होता कि अल्लाह ताला जो है ना वो बस सारा का सारा इस बुत के अंदर है, ये सारा का सारा इस बुत के अंदर है। नहीं, ये नहीं होता ना। हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो 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 छुछुंदर है, और ये जो मच्छर है, और ये जो गाय है, और ये जो चूहा है, अल्लाह ताला जो है वो चूहे के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से हम चूहे की इबादत करें। नहीं, और ना जो है वो इन मुशरिकीन मक्का का ये कॉन्सेप्ट था कि लात और उज्जा और मनात वगैरह जो है अल्लाह ताला इनके अंदर पूरा का पूरा आ गया। नहीं, पूरा का पूरा नहीं आ गया, बल्कि अल्लाह ताला की एक सिफत जो है ना वो इसके अंदर आ गई, और अल्लाह ताला ने इस सिफत को जो है ना वो फलाने बुत को या फलानी मखलूक को जो है ना वो क्या कहते हैं वो हम ऑफिस के अंदर जो काम क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब अपना काम जो है वो आप किसी अपने एम्प्लॉय को या अपने किसी जूनियर को जो है वो क्या लफ्ज मेरे ध्यान नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बताएं, डेलीगेट कर दिया, जदा कर दिया, डेलीगेट कर दिया उसमें, है ना, और अल्लाह ताला ने जो है वो कोई और काम संभाल लिया और किसी और काम में बिजी हो गया, और ये वाला काम जो है ना फलाने को डेलीगेट कर दिया, वो कर रहा है ये वाला काम पूरा का पूरा। ठीक है, ये है इनका, ये शिर्क है। ठीक है ना, ये नहीं है कि पूरा का पूरा नाउज बिल्ला खुदा जो है वो इस बुत के अंदर आ गया और उस फलानी चीज के बंदे के अंदर आ गया। ठीक है, तो शिर्क जो है ना उसकी भी तफसील है कि शिर्क से क्या मुराद है, मतलब तौहीद से क्या मुराद है और शिर्क से क्या मुराद है। तो यही तो तौहीद के कतअन खिलाफ है कि अल्लाह ताला की कोई सिफत जो है या अल्लाह ताला का कोई पोर्शन जो है ना वो फलानी मखलूक के अंदर हुलूल हो गया। ठीक है, बल्कि मुराद जुहूर है, और क्या मतलब जुहूर, जैसा आईने में जिस चीज को देखा जाता है वो आईने में हुलूल किए हुए नहीं होती है, बल्कि इससे अलग और खारिज में होती है। ठीक है, आईने के अंदर नहीं होती है वो, उसके अंदर तो सिर्फ एक अक्स नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जाहिर है कि ये जुहूर जिसको तजल्ली भी कहा जाता है, खुद जात हक सुबहान व तआला की तजल्ली नहीं थी, वरना अगर जात हक तआला का मुशाहिदा, ठीक है ना, यानी ऐसा भी नहीं था कि ये जो आग थी या ये जो दरख्त था तो ये गोया के पूरा का पूरा एक आईना था और अल्लाह की जात इस आईने में नजर आ रही थी, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह की जात के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना वो तजल्ली, क्योंकि अल्लाह ताला जो है नूर समावाती वाला, ठीक है, तो नूर की तजल्ली यानी एक तरह का एक जैसे कि वो एक क्या कहते हैं बर्क है? क्या क्या वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा, करंट तो नहीं, वो क्या कहते हैं उसको जो बर्क को, तो यानी अल्लाह की तजल्ली जो है ना वो नहीं इसके अंदर आईने के अंदर नजर आ रही। ठीक है, अच्छा उसकी दलील लिख रहे हैं कि ये अल्लाह की तजल्ली उसके अंदर नजर नहीं आ रही थी, वरना अगर जात हक तआला का मुशाहिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने कर लिया होता, ठीक है, कि भाई वो उस आग को देख लिया और उसके अंदर जो है वो यानी जुहूर हो गया अल्लाह ताला की तजलियात का, ठीक है। तो बाद में उनके इस सवाल की कोई वजह नहीं रहती, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, क्या जबरदस्त कुरान मजीद से दलील दी है, ठीक है, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बाद में जाके, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो भाई जब देख लिया आप कौन सा देखना चाहता हूँ, वही फरमा रहे कि ए यानी ए मेरे परवरदिगार मुझे अपनी जात पाक दिखा कि मैं देख सकूं, और इसके जवाब में हक ताला की तरफ से लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे का इरशाद भी फिर कोई मानी ना रखता है। भाई पहले तो देख करके आ गए, अब आप कौन से कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं देख सकते, राइट। तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने हक ताला को तो देखा ही नहीं था, ठीक है। इससे मालूम हुआ कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल में हक ताला जल्ल शानहू का जुहूर मुराद है, यानी तजल्ली जो आग की सूरत में हुई, ये जिस तरह हुलूल नहीं था इसी तरह तजल्ली जात भी नहीं थी, बल्कि लंतरानी वाली आयत से ये साबित होता है कि इस आलम दुनिया में तजल्ली जाती का कोई शख्स मुशाहिदा नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की इस खास जो जाती तजल्ली है ना, उसका इस दुनिया के अंदर कोई मुशाहिदा नहीं कर सकता। फिर इस जहूर व तजल्ली का क्या मफहूम होगा? इसका जवाब यह है कि ये तजल्ली मिसाली थी, ठीक है ना, यानी ये अल्लाह ताला की जाती बिल्कुल पर्सनल तजल्ली नहीं थी, बल्कि उसका एक सिमिलीट्यूड था, उसका एक जो है ना वो एक यानी एक मिसाल, एक सोर्ट ऑफ एग्जाम्पल टाइप की, सिमिलीट्यूड का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है इसके लिए, तो एक मिसाली सी तजल्ली थी जो हजरात सूफिया कराम में मारूफ है, ठीक है, के बड़े ख्वाब के अंदर भी अल्लाह ताला की जियारत होती है, बड़े कई कई दफा हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को, राइट, और दूसरे मशाइख को भी आज के दौर के अंदर भी जो ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला की जियारत होती है, तो वो यही एक तजल्ली मिसाली होती है, ठीक है। इसकी हकीकत का समझना तो इंसान के लिए मुश्किल है, हकीकत का समझना तो इंसान के लिए मुश्किल है, ठीक है। इन्होंने अल्लाह नूर समावाती वाल अर्द पूरी पूरी आयत माशाल्लाह इधर कोट कर दी, तो वो तो एक वैसे भी ये आयत जो है वो मुतशाबिहात में से है, कि जिसका एग्जैक्ट मानी जो है ना वो हम नहीं समझ सकते, ठीक है, जैसे हुरूफ मुखत्तआत जो है ना उनके नहीं समझ सकते, उसी तरह से इस वाली आयत का ये भी मुतशाबिहात में से आती है। अच्छा, ऊपर एक सवाल भी किसी ने लिखा था, वो भी हम देख लेते हैं कि जो ख्यालात हमें नमाज में आ रहे होते हैं कि अब मैं ये वाला काम नमाज के बाद करूंगा और वाकई होने वो काम कर लिया, तो क्या नमाज दोहराना होगा? नहीं, नमाज दोहरानी नहीं होगी। अगर इस तरह का कोई ख्याल आ गया और फिर आपने वाकई वो काम कर लिया, तो इसका क्या ताल्लुक हुई नमाज के फासिद होने से? नहीं, ठीक। देखिए, एक होता है जानबूझ के आप ख्याल लाएं, यानी अल्लाह अकबर कहा और उसके बाद जो है ना वो सोच रहे हैं कि अच्छा व्हाट, अपनी थिंग्स टू डू लिस्ट को के ऊपर गौर कर रहे हैं, अच्छा उस वाले में से वो फलाना वाला टास्क मैंने कर लिया, अब जो है मुझे फलाना टास्क रह गया है, फलाना टास्क कर लिया वो रह गया है, तो ये तो नमाज तो फिर भी नहीं दोहरानी होगी, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, वरना तो हम में से बहुत से जो है ना वो दोहराते ही रहते हैं सारी नमाजें अपनी, ठीक है, क्योंकि हम यही कर रहे होते हैं, नमाज तो फिर भी नहीं दोहरानी होगी, लेकिन ये एक बहुत ही यानी मजमूम किस्म का अमल है कि आप नमाज में बैठ करके एक्सप्लिसिटली जो है ना वो किसी चीज के बारे में सोचें। एक और दूसरी चीज ये होती है कि आप बाकायदा एक्टिवली नहीं सोच रहे, लेकिन पैसिवली वो ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ख्यालात आ रहे हैं ना, तो उन ख्यालात को झटकें और नमाज का जो के जो अफआल हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है ना, यानी जरा लड़ाई शड़ाई करनी पड़ती है ख्याल के साथ, ठीक है, तो अफाल नमाज के ऊपर फोकस करें और अरबी आती है तो अल्फाज नमाज के ऊपर भी फोकस करें, ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, अल्लाह सुब्हान तआला कास्टेड ए तजल्ली एट द लोकेशन ऑफ काबा, इज दिस करेक्ट? इफ यस, व्हाट काइंड ऑफ तजल्ली वाज इट एट द लोकेशन ऑफ काबा? हाँ, जो अल्लाह ताला की यानी जो इस जमीन की जो पैदाइश हुई है, ठीक है, तो वो यानी जमीन जो बनना शुरू हुई है ना, ये पूरी प्लैनेट अर्थ, तो वो कहाँ से शुरू हुई है? काबतुल्ला के मुकाम से, ठीक है, तो काबतुल्ला एक एक काबा जो है, एक उभरी हुई बेसिकली एक 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 जमीन, एक जगह है आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर, और वहां से जो है ना ये पूरी की पूरी जमीन फैल करके जो है वो इस तरह से आपकी इलेप्टिकल फॉर्म जो है वो बन गई। तो वहां पर अल्लाह ताला की जो है वो तजल्लियात खासा का नुजूल होता है, और अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो वो भी जो है ना वो अल्लाह ताला की जात नहीं है कि भाई आप काबतुल्लाह को देख रहे हैं, या किसी को अगर कश्फ नसीब हो गया तो वो जो काबतुल्लाह को देख रहा है तो उसको नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की जात नजर आ रही है, अल्लाह ताला की जात ही तजल्ली नजर आ रही है। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला की खसूसी तजल्ली है जो कि बैतुल्लाह वाली तजल्ली है ना, घर वाली तजल्ली, तो वो वहां पर हो रही है। इसी वजह से काबतुल्लाह की इमारत को अगर आप ढा दें तो नमाज जो है वो उस वक्त भी चलती रहेगी, है ना। इमारत हो ना हो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस स्पॉट के ऊपर एक बाकायदा अल्लाह ताला की तजलियात का एक सुतून सा, बाकायदा एक पिलर सा जो है ना, वो बैतुल मामूर से लेकर के बैतुल्ला यहाँ तक जो है वो पिलर बन रहा है। आप जो है वो उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं, बेशक आप जो है वो मस्जिद हराम की थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएं या आप किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच जाएं, राइट। हेलीकॉप्टर में नमाज का वक्त हो गया, आप जो है वो वहां पे सर्वेलेंस कर रहे थे तो नमाज का वक्त हो गया, तो आप उस डायरेक्शन में, क्योंकि सुतून तो है ना उस डायरेक्शन में। अब आप स्पेस के ऊपर पहुंच जाए तो भी अगर कोई डायरेक्शन वगैरह किसी तरीके से उस तरफ की आपको मिल जाए, अब वहां पे जो है वो पॉइंट करते हैं। हाँ, जमीन अब ओशन की डेप्थ में पहुंच जाए तो ओशन की डेप्थ में भी आप जाकर के उसी डायरेक्शन के अंदर आप नमाज पढ़े होंगे, क्योंकि ये यानी थ्रू जाती है, ये ऊपर से लेके नीचे तक अर्थ के। तो बहरहाल तो हजरत ने फिर इस दलील के साथ समझा दिया कि यहाँ पे कोई जाती तजल्दी की बात नहीं हो रही है, बल्कि तजल्दी मिसाली की। और हजरत इब्न अब्बास से जो रवायत है ना, मन फिन नार से मुराद अल्लाह ताला की मुराद है, जाते हक ताला सुबहाना, तो वह जाते हक ताला सुबहाना से मुराद जो है जाते हक ताला सुबहाना की मिसाली तजल्दी। ठीक है, टाइम मुकम्मल हो गया क्लास का, तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली दफा, अच्छा बुध को सफर है तो शायद क्लास इंशाल्लाह नहीं होगी, सफर इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो गया तो क्लास नहीं होगी, तो अगली मंडे को रिज्यूम करेंगे। इंशाल्लाह, सलाम अलैकुम।